नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और एक ऐसा श्लोक है जिसका कि अक्सर निराकारवादी या निर्विशेषवादी या जिनका ज्ञान दूषित है उसका दुरुपयोग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बताया जा रहा है एक बार इसको इसका ट्रांसलेशन फिर से पढ़ते हैं। वास्तविक योगी जो समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, यानी मुझको जीवों में और जीवों को मुझ में देखता है, निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो वास्तव में परमेश्वर ही चारों ओर है ना, जीवों में मेरे को देखता है, मेरे को जीवों में देखता है, तो हम भगवान हो गए, यानी हम परमात्मा हो गए। इस तरह से लोग कहते हैं ना, जैसे कि एक बार हम एक ऑफनेज में गए थे तो ऑफनेज में भी हमको ये बोला, देखिए आप बच्चों को खिलाए, बच्चे जो है क्या है, देखिए ये भगवान ही तो है, परमेश्वर का रूप है, तो ये भगवान ही है, क्योंकि परमेश्वर तो सब जगह है, तो परमेश्वर ये सब छोटे छोटे परमेश्वर ही तो है। हाँ, तो अक्सर जो है इस प्रकार, क्योंकि इससे कई बार इस तरह की मीनिंग में निकालते हैं लोग, पर यहां पर जो इसको समझना हमें किस तरह से वास्तव में भगवान जो है हर जीव के, क्या बताया, हर जीव में मेरे को देखता है ना, जीव के अंदर भगवान को देखना उसका क्या अर्थ है। वास्तव में जो आत्मा है, जैसे आप जानते हैं कि भगवान जो है जो भी सृष्टि में दिखाई देता है हमें उसका आधार भगवान है कि नहीं, सब मानते हैं इस बात को, यस। तो यानी आत्मा के अस्तित्व का आधार भी कौन हुआ, भगवान है ना। तो इसीलिए भगवान आत्मा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आत्मा के अंदर रहते हैं। परमात्मा कहाँ होते हैं, आत्मा के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए। जैसे कि मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है लेकिन मैं स्वेटर नहीं हो गया, है ना, उसी तरह से जो है जो जीव के अंदर भगवान है, तो भगवान अंदर है, जैसे कि मैं अंदर हूं इस कपड़े के लेकिन मैं कपड़ा नहीं हो गया, है ना, उसी तरह से भगवान भी जीव के अंदर है लेकिन जीव की स्वतंत्रता में, यानी कि उसकी इच्छाओं में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। यानी कि अगर किसी की शराब पीने की इच्छा है तो ये नहीं कि अरे वो परमात्मा से ही आ रही है, भाई पियो, भाई साहब हमारे दो पैक लगाओ, परमात्मा से आएगी इच्छा भी हमें, अरे कोई बात नहीं, किडनी खराब होती तो क्या हुआ, भाई परमात्मा से आई हुई इच्छा पूरी करनी है। हाँ, तो ये जो इच्छा है ये आत्मा की इच्छा है, भगवान ने नहीं दी कि भाई परमात्मा अंदर है तो परमात्मा ही जो है आत्मा को बोल रहे हैं तू कर, तू ऐसा कर, ना ना ना। अगर भगवान ऐसा करेंगे तो फिर हमारे में यानी जीव में और जड़ पदार्थ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी कोई इच्छा है नहीं भाई, हमारी अपनी कोई सुंदरता है नहीं, देयर इज नो फ्री विल, नो फ्रीडम, तो हम तो डेड मैटर हो गए ना। ऐसे ही है, हमें इसको हिलाओ हिलाओ कुछ करता है ना, डेड है ना ये, तो इसी को इच्छा नहीं है, कहता नहीं मैं नहीं हिलूंगा, कर सकते है ना, जैसे हिलाना तो हिले गए क्योंकि डेड है ना। तो हमारे में और डेड मैटर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा फिर तो। तो भगवान जो है हर जीव के अंदर है लेकिन जीव की इच्छाओं के साथ हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है। तो हर जीव में मेरे को देखता है, यानी कि इस जीव को वास्तव में जो इसका अस्तित्व का आधार कौन है, भगवान है, और सब जीवों को मेरे में देखता है, सब जीवों को मेरे में देखता है। इसका मतलब यह है वास्तव में भगवान की बनाई जो प्रकृति है, जो कि भगवान की प्रकृति है, हाँ, उसमें जो है वास्तव में हम सब जीवित हैं। अब ऐसी ये जो भौतिक प्रकृति हम देख रहे हैं चारों ओर, ये भगवान की प्रकृति है। ऐसा जैसे कहते हैं ना भाई साहब इसका नेचर बड़ा गंदा है, इतना गंदा नेचर है, आप किसी की तारीफ करेंगे इसका नेचर बड़ा अच्छा है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग अपना अपना नेचर है कि नहीं। तो ये जो नेचर हम देख रहे हैं ये भी तो किसी का नेचर होगा, ये भगवान का नेचर है, हम कहते हैं ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति मतलब नेचर है कि नहीं, हम सबका अपना अपना नेचर है, हमारा नेचर है ना, तो भगवान का भी तो नेचर होगा, ये भगवान का नेचर है, तो भगवान के नेचर में है हम लोग वास्तव में। तो इस तरह से मुझ में सबको देखता है, यानी कि वास्तव में ये सृष्टि जो है वो भगवान की ही है, भगवान की शक्ति है, तो वो शक्ति में वास्तव में मेरे को देखता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है देखो भगवान जो है सब और है, अच्छा भगवान सब और है, अच्छा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओके, तो इसका मतलब है भगवान का कोई रूप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा है भाई जो चीज सब और होती है वो तो निराकार होती है। जैसे कि लाइट आ रही है, लाइट चारों आ रहे हैं, निराकार है, है कि नहीं, इसका कोई आकार है इस लाइट का? कोई आकार नहीं है, है ना। यानी कि जो चीज चारों ओर फैली होती है वो निराकार होती है, जो चीज चारों ओर फैली होती है वो निराकार होती है। अच्छा अच्छा शास्त्र पढ़ते हैं जरा, भगवान जो है सब और हैं। अरे यानी कि भगवान भी निराकार हैं, पर वास्तव में भगवान सब और कैसे हैं? एक तरफ हम कहते हैं भगवान का रूप है, अगर रूप हुआ यानी कि भाई लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई ना, यानी कि भाई रूप है ना। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं भगवान सब और है। अब ये चीज तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, या तो वो सब और होंगे या फिर उनका रूप होगा, लेकिन दोनों ही चीजें शास्त्रों में दी गई है कि भगवान का रूप भी है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, रूप भी है लेकिन भगवान चारों ओर भी है। यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो कैसे समझे इसको? भगवान जो है वास्तव में सब और है लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में, अपने विस्तारों के रूप में, समझना। जैसे कि कोई फेमस व्यक्ति हो है, या फिर आपको कोई बहुत कोई जानकार व्यक्ति हो है, तो उसका बेटा आएगा तो कहेंगे इससे उनका नाम मल्होत्रा साहब है, है? अरे मल्होत्रा साहब का बेटा, अरे मल्होत्रा साहब की वाइफ, अरे मल्होत्रा साहब का घर है वो तो, अरे तो मल्होत्रा साहब की कार है, मल्होत्रा साहब, है ना। यानी कि ये मल्होत्रा साहब की एनर्जीज हैं, उनसे संबंधित हैं, है ना। उसी तरह से हम जब सृष्टि की बात करते हैं तो वास्तव में सृष्टि जो है वो भगवान की है, कृष्ण की प्रकृति। तो भगवान हर वस्तु के अंदर है उसको सस्टेन करने के लिए, और हर वस्तु के बाहर भी है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये चीजें बड़ी अचिंत्य हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसी कोई चीज किसी व्यक्ति में देखी नहीं है ना, इसीलिए जो है लोग इसे समझ नहीं पाते। पर इस तरह से भगवान जो है सब चीजों का आधार है वास्तव में। भगवान इसलिए सर्वव्यापी हैं अपनी शक्तियों के रूप में। अब उनकी शक्ति और उनमें भेद है भी और भेद नहीं भी है, है ना। जैसे कि जैसे आम अब आया पेड़ से आया, है ना। अब आम अगर पेड़ पे लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, भाई ये आम का पेड़ है। लेकिन और डिटेल में जाएं तो हम देखेंगे भाई ये पेड़ है और ये आम है, है ना। तो ये एक भी हो गया, वननेस भी हो गई और डिफरेंस भी हो गया। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। क्या कहते हैं इसे? भेद अभेद। भेद भी है और अभेद भी है। और ये जो है सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद, ये सब और मिलेगा आपको, सब और मिलेगा। इवन सिंपल चीज जैसे मटर, हमने मटर देखा, अगर एक मैं हाथ लू मटर, ये कितना मटर, एक मटर खोल के देखो कई सारे मटर है कि नहीं। तो एक भी है अलग अलग भी है, तो वननेस भी है और डिफरेंस भी है कि नहीं। जैसे कि हम कहें जी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सरदार जी हैं, कोई ये कहें तो कई सारे सरदार जी भी हैं, लेकिन उनमें से एक सरदार जी जो है मनमोहन सिंह जी, वो प्राइम मिनिस्टर है ना, हेड। हम सब इंडियन हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, हम सब इंडियन है, तो वननेस भी है और डिफरेंस भी। हम प्राइम मिनिस्टर हैं नहीं। इसी तरह से भगवान भी जो है एक लिविंग एंटिटी है, हम भी एक जीव है, हम भी लिविंग एंटिटी है, लेकिन वो महान है, हम उनके दास हैं। तो सब और वास्तव भगवान कैसे है? कैसे है? अपनी प्रकृतियों के विस्तार के रूप में भगवान सब और है। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो महाप्रभु जब छोटे थे तो उनकी एक लीला है, तो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है कहीं से, पीछे से कहां से आ रही है? ऊपर से। प्लीज कंट्रोल करें कंट्रोल रूम से बातों को भी, धन्यवाद। तो गौरांग महाप्रभु जब छोटे थे तो उनकी माता है, माता शची। गौरांग महाप्रभु बारे में कौन बिल्कुल नहीं जानते, हाथ खड़ा करें। आपने गौ नेता देखे ना, गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आए थे श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, ठीक है। तो वो जब छोटे थे तो उनकी बाल लीला है। तो माता शची जो कि यशोदा मैया है वास्तव में, जो कि माता शची के रूप में आई जब गौ लीला भगवान ने जब उसका प्राकट्य किया, तो उनके लिए संदेश बनाया। उन्होंने कहा अरे निमाई निमाई कहां है, निमाई कहां है, निमाई 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 निमाई। तो बाहर जाके देखा तो ना एक मिट्टी के ढेर के ऊपर जो है निमाई बैठे हैं और ना मिट्टी खा रहे हैं। तो शची माता ने कहा अरे निमाई ये तुम क्या खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए संदेश लेके आई हूं। तो निमाई ने कहा क्या फर्क है, सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है और जो आपकी थाली में है वो भी मिट्टी है। तो सती माता ने कहा ये बेवकूफाना सिद्धांत तुमको किसने सिखाया बेटा, बेटा ये संदेश है और वो मिट्टी है, दोनों पदार्थ ही है लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे कि मिट्टी को ही देखो तुम, ये जो मिट्टी का तुमने ढीला हाथ में लिया हुआ है, क्या तुम इसके अंदर पानी भर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर पानी, लेकिन उसी मिट्टी का जब मटका बन जाता है तो पानी उसमें ठहरा सकते हैं, है ना? तो वो दोनों मिट्टी हैं, लेकिन फिर भी फर्क है ना? उसी तरह से ये भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है, लेकिन वो खाने लायक नहीं है, ये खाने के लिए है। तो निमाई ने कहा अरे माँ मुझको तो पता ही नहीं था, अच्छा हो तुमने मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया, लाओ लाओ मुझे संदेश दो। और फिर महाप्रभु ने खाया। तो यहाँ शची माता ने वास्तव में अचिंत्य भेदा वेद तत्व सिद्धांत की जो शुरुआत कर दी थी, उन्होंने इस तरह से समझाया उन्होंने निमाई को। निमाई ने कहा अरे हाँ ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, अरे हाँ है ना, जैसे कागज का नोट होता है ना, वो भी कागज है और कॉपी के अंदर भी कागज है, तो कॉपी का कागज फाड़ के दुकानदार को दो, अरे सब कागज है भैया दे दो आधा किलो, अरे भाई साहब आगरा जाओ। तो दोनों कागज है लेकिन फिर भी फर्क है ना, राइट? तो इस तरह से अचिंत्य भेद अभेद आपको हर जगह मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा। जैसे कि वर्ण की बात करें जो जीवों में भी ऐसा होता है, जैसे कि यहां कहते हैं आज स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हाँ? ये बता रहे फिर बस में जब कंधे से कंधा लड़ता है फिर दिक्कत होती है, हाँ? कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हाँ? भाई साहब ढंग से खड़े हुए, अरे आप बोलते हैं कंधे से कंधा मिला के चलिए, हाँ? तो वहां डिफरेंस आ जाता है। सो वननेस एंड डिफरेंस, दोनों का जो है पालन वास्तव में आपको हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर। तो वास्तव में जो फिर भगवान के भक्त होते हैं वो उनकी दृष्टि, क्योंकि जो है कृष्ण भावना भाव बताया गया, कृष्ण भावना भाव व्यक्ति होता है वो हर चीज कैसे देखता है कि इस चीज को मैं कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, इस चीज को मैं कृष्ण की सेवा में ऐसे लगा सकता हूँ, ये वस्तु कृष्ण की सेवा में इस तरह से लग सकती है, वो इस तरह से सोचता है। ऐसे कोई भक्त जहां भी, इनफैक्ट जहां पर कुछ भी नहीं है ना वहां भी भक्त सोचता है इस कुछ नहीं को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं। ऐसे कि कुछ भक्त यहां गए भाई मंदिर में, कहते वो यहां तो एकदम कुछ है ही नहीं, कितना अच्छा हो कि यहाँ पर हरिनाम का कीर्तन हो, शांति मची हुई है यहाँ पे एकदम, यहाँ पर हरि हरि का कीर्तन गूंजना चाहिए। तो अगर मतलब जहां कुछ भी नहीं है वहां पर भी जो है भक्तों को कृष्ण का स्मरण होता है कि इस खालीपन को भी देख के सोच रहे हैं कि ना कृष्ण यहाँ पर हो, कृष्ण के नाम का कीर्तन हो यहाँ पर, तो कितना अच्छा रहेगा भाई मंदिर में, इसलिए वो भाई है, इसको अंदर आना होगा, है ना? बाहे मतलब एक्सटर्नल, बाहे मंदिर आंतरिक मंदिर बना होगा जब इसमें हरिनाम का कीर्तन होगा, ऐसी शांति वाला क्या लाभ। तो जो भक्त होता है उसका यही विजन होता है। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने जब सूरज को देखा तो सूरज को देख के प्रभुपाद ने कहा, हमने डिसाइपल से पूछा जानते हो वो क्या है, तो उसने कहा प्रभुपाद सूरज ही दिख रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा दैट्स आई ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण की आंख है, क्योंकि कृष्ण की कृपा दृष्टि से ही ये सृष्टि चल रही है। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, भक्त जो होता है वो सबको जो है वो कृष्ण से ही जुड़ा हुआ दिखता है, वो कृष्ण से ही जुड़ा हुआ दिखता है। जब भक्त जो है आप आसमान में देखते हैं कि से बारिश हो रही है, बहुत तेज बादल है वहां पर, बादल के बीच में से जो है लाइटनिंग यानी कि जो जो बिजली चकाचौंध हो रही है, तो भक्त देखता है ओ ऐसी ये जो बादलों का रंग है श्याम, और उसमें से जो जो जो, जो बिजली है, जो चकाचौंध बिजली है वो गोल्डन कलर तो राधा रानी का है, सो इट लुक्स लाइक राधा एंड कृष्णा जो है वो स्विंग कर रहे हैं, हाँ ये मॉनसून का सीजन, कोई ऐसा सोच सकता है? कौन सोचेगा? तो बहुत ही प्रकृति भी आध्यात्मिक हो जाती है भक्त के लिए, क्योंकि उसकी चेतना वैसी हो रखी है, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है इसलिए हम आध्यात्मिक चीज को भी भौतिक देखते हैं। ऐसे डीटीज है भगवान के विग्रह, जो पत्थर जिनका हृदय पत्थर का होता है, कहते हैं अरे ये पत्थर ही तो है, ये नहीं वो पत्थर नहीं है, तेरा ये पत्थर है, इससे तेरे को पत्थर नजर आ रहा है। जैसे कि अब मैं इसको, ये मेरे ग्लासेस हैं, इनको ब्लू कर दूं, यार तुमने सारा ऑडिटोरियम ब्लू क्यों पेंट कर दिया तुमने, ए भाई साहब इसको उठाओ, है ना? तो इस तरह से जिनका हृदय पत्थर है वो देखते हैं अरे ये तो विग्रह पत्थर ही है, संगमरमर, बाद में खुद मरते हैं, हाँ मृत्यु के मुंह में, बात और है। बट द पॉइंट इज दैट कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो भक्त जो होता है वास्तव में इसे बता रहे हैं अगले श्लोक में, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भक्त तो ऐसे होते हैं। हाँ, तो भक्तों तो भक्त के जो है कभी भगवान से दूर इसलिए होता ही नहीं, वो हर जगह कृष्ण को देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ था, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, कहां है तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि सब और है तो सही। अब वो ऐसा नहीं करते मतलब थ्योरेटिकली, उनको एक्चुअली भगवान चारों ओर नजर आते हैं। तो कहते हैं बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं पिताजी, सब है तो सही, सब और है, नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहते क्या सब और है? कहते हाँ, क्या दिख नहीं रहे क्या आपको? सब और है तो सही, नहीं हिरण्यकश्यपु को नजर नहीं आ रहे। कहते इस खंभे में भी है? हाँ खंभे में भी है। लेकिन प्रहलाद महाराज को सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। इस लाइक वो पूछे कि भाई क्या, कोई मेरे से पूछे क्या तुम्हारे सामने गीता रखी है? मैं कहूंगा कमाल की बात है, हाँ गीता रखी तो है, और क्या कैसे सवाल पूछ रहे हो, है कि नहीं? उसी तरह से प्रहलाद महाराज को अजीब लग रहा है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे पिताजी हैं, सब और है तो सही, खंभे में भी है, हाँ है तो सही। तो भक्त की जो है दृष्टि ऐसी होती है वास्तव में, इसीलिए भक्त जो है कई भगवान को खोता नहीं है, कई भगवान उसके लिए अदृश्य नहीं होते कभी भी। तो जब वो भक्तों के संग में आता तो ये सीखता है वो वास्तव में। ऐसे महाप्रभु थे, महाप्रभु के मैं महाप्रभु की लीला इससे भी ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि अब गौर पूर्णिमा आ रही है तो हमें जो है वो मूड डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अभी सब कह रहे थे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये विश कर रहा हूं हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस क्रिश्चियन न्यू ईयर। मैं क्रिश्चियन ऐड कर रहा था बीच में, क्योंकि ये क्रिश्चियन का न्यू ईयर है एक्चुअली। और इस कैलेंडर के अंदर इतनी मैनिपुलेशन हो चुकी है, पता नहीं पूछिए मत। ऐसे अगस्तीन और जूलियस सीजर ने अपने दो महीने डाले इसके बीच में, जुलाई और अगस्त। पहले 10 महीने थे इस कैलेंडर में, बाद में जूलियस सीजर और अगस्तीन नाम के दो राजा हुए, दोनों ने अपने 31-31 दिन के दो महीने डाले। इसमें आप देखते हो कि जुलाई में भी 31 दिन है और अगस्त में भी 31 दिन है। अभी और पता नहीं और बाद में कितने कितने महीने आने। सो ये हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, बट एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर आता है गौर पूर्णिमा के दिन जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, दैट्स रियल हैप्पी न्यू ईयर। तो इसलिए लेकिन एनीवेज हम लोग मनाते हैं, क्योंकि तब उस दिन सेलिब्रेशन मूड में होते, तो हम उस सेलिब्रेशन में कृष्ण को डालते हैं और रात को हम हरिनाम कीर्तन करते हैं। बट एनीवेज, तो गौर पूर्णिमा जो है आने वाली है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मोर पास्ट टाइम्स लॉर्ड चैतन्य गौरांग महाप्रभु। तो इस तरह से महाप्रभु ने जो अपनी लीला का प्राकट्य शुरू किया तो पांडित्य के रूप में शुरू किया, अपने पंडित के रूप में। ऑफकोर्स भगवान को कौन हरा सकता है पांडित्य में, कोई हरा सकता है उन्हें? कोई नहीं हरा सकता। जब निमाई जो थे, वो निमाई के नाम से, उनका बचपन का नाम निमाई भी था क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, और किसी की नजर ना लगे उनके निमाई को, तो शची माता और बाकी जो गोपियां थी जो नदियावासी थे, उन्होंने नाम रखा था निमाई, ताकि जो है इसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये उनका भाव है भक्ति का। तो निमाई जो थे ही वाज स्कॉलर, कोई मतलब हरा नहीं सकता था उन्हें। निमाई खुद जो है एक तर्क प्रस्तुत करेंगे और फिर सामने वाले बोलेगा अरे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये बात तो निमाई ने बिल्कुल ठीक बोली। एक फिर निमाई कहेंगे मैं बात बताऊं, मैंने जो बोला ना वो गलत था क्योंकि इसके अंदर ये गलती है। तो सामने लगता अरे हाँ अब सही बोला निमाई ने, अब सही बोला। निमाई कहते हैं बताऊं एक और बात, ये जो मैंने बोला ना ये भी गलत है क्योंकि असल चीज तो ये है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हाँ ये सही है, सही। फिर अपना ही तर्क फिर काटेंगे एक और तर्क से, कहेंगे मैं बताऊं ये तीसरी बात भी गलत है क्योंकि सामने वाला भाग ले जाता था, अरे बाप रे बाप निमाई So he was like that, scholar. और कोई जहान के सामने ठहर नहीं सकता था, कोई ठहर नहीं सकता था निमाई के आगे। जो 12 साल के थे तो उनका जो है संस्कृत स्कूल था निमाई का, गंगा नदी के किनारे। तो एक बहुत ही विख्यात स्कॉलर आया, उसका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी आया तो अपने खूब हजूम था, और केशव कश्मीरी था, he was like उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। पूरी दुनिया में कोई भी जो है स्कॉलर नहीं था जो कि केशव कश्मीरी आगे जो है जीत सके। तो नदिया भी आया, क्योंकि नवद्वीप जो था उस वक्त गढ़ माना जाता था विद्या का। तो आया वहां पर तो सब जैसे ब्राह्मण डरे बैठे, अरे बाप रे बाप ये आ गया, आप तो हमारी इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो सबने कहा ऐसा करते हैं, देखो इसको ना निमाई के पास भेज देते हैं, ठीक है। अगर इसने निमाई को हरा दिया तो हम कहेंगे भाई जो बच्चों से वार्तालाप करते हैं हम उसे चर्चा नहीं करते, जाओ यहां से। और अगर निमाई ने इसको हरा दिया, हम कहेंगे अरे बच्चे से हार गया, हमसे क्या बात करेगा सब। तो चित भी हमारी पट भी हमारी, तो इसको ना, तो इस तरह से क्या हुआ, सबने जो है बोला आ जाए जाओ जाओ पहले निमाई से बात करो फिर हमसे बात करना। अच्छा चलो ठीक है, तो केशव कश्मीरी अपने हजूम के साथ डुम टुम टुम टुम, हाथी और हजूम था उसके साथ, और गया गंगा नदी के किनारे। क्या तुम हो निमाई? निमाई ने कहा जी हाँ मैं ही हूँ निमाई। अच्छा मैं जाना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े स्कॉलर हो, कितने बड़े पंडित हो तुम। मैंने कहा, निमाई ने कहा आप वरिष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आप ही कुछ बोलिए। कहा चलो ठीक है। गंगा नदी इस पास में बह रही थी, गंगा नदी की महिमा पे जो है उन्होंने 100 श्लोक बोल डाले, तर 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 स्पॉन्टेनियस। कहते क्यों निमाई कैसा लगा? निमाई ने कहा अच्छा था। आइए हम आपकी जो एक जो रचना थी इसमें अलंकार और इसमें दोषों की चर्चा करें। कहते हैं एक मिनट निमाई, अलंकार मेरी बात में समझ में आते हैं, मेरी को समझ में आते हैं, लेकिन दोष मेरे दोष, हाँ तुमको पता है जब मैं बोलता हूं तो साक्षात सरस्वती मेरी जुबान से बोलती है, तुम दोष निकालोगे मेरे में? तो अच्छा चलो देखते हैं तुमने क्या अलंकार क्या दोष निकाले। तो निमाई ने पहले अलंकार बताया, अरे आपने ये विभक्ति का इस्तेमाल किया, इसमें ये इस्तेमाल किया। कहते हैं अब दोष सुनिए, अब दोष निकालने शुरू किए। पहले तो निमाई ने सारी कविता सुना दी एज इट इज। अरे बाप रे, मैंने एक बार जो है मैंने इसको तूफान की मतलब हवा की नदी की तरह मैंने बहा दिए थे सारे श्लोक, तुमने याद कैसे कर लिए? क्या ये सब जो है मेरे गुरुजनों की कृपा है? निमाई ने कहा भगवान है फोर्स, उनके लिए क्या मुश्किल है। तो उन्होंने सुना दिया, उसके बाद कहते हैं आप दोषों की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने एक तो कई सारे दोष थे, उनमें से एक दोष बड़ा फेमस बताया जाता है, वो है भवानी भरतुर। बताया मतलब ये गंगा नदी वो है जो कि भवानी के पति के शीश पर आई और फिर ये बही है, ये उसका मीनिंग था। लेकिन ये उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो था भवानी भरतुर। भवानी मतलब पार्वती, भरतुर का मतलब पति, ठीक है? तो यानी क्या हुआ, पार्वती के पति। लेकिन निमाई ने कहा लेकिन भवानी का मतलब होता है शिव की पत्नी, तो इसका मतलब क्या हुआ, शिव की पत्नी के पति, यानी कि पार्वती के दो पति हैं, एक तो शिव और एक वो जिसके सर पे गंगा आई। इस तरह काफी सारे दोष निकाले वो सर पकड़ लिया उन्होंने। कहते हैं तो निमाई ने कहा लगता है आप काफी तनाव में हैं, आप कल आइए कल चर्चा करेंगे। तो घर पे गए अपने, उन्होंने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि माँ हे माँ, मैं रोज मैं जब भी बोलता हूं तो आप साक्षात मेरे मुंह से बोलती थी, आज एक 12 साल के लड़के ने मेरे को हरा दिया। तो माता सरस्वती प्रकट हुई उनके सपने में, उन्होंने कहा मूर्ख जिनसे तू आज लड़ने के लिए गया था वो मेरे नाथ हैं, मेरे पति हैं, मेरे सब कुछ हैं, जो मेरे पास आ रहा है वो उन्हीं से आ रहा है, तो उनके खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, तेरे साथ छोड़ी जाऊंगी मैं, उनके साथ रहूंगी ना। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती होगी। अगले दिन जो है केशव कश्मीरी ने जो है सरेंडर कर लिया। तो ये स्कॉलरशिप थी निमाई पंडित की। तो जो है लेकिन अब भगवान अब आए तो ऑफकोर्स भक्ति की लीला प्रकट करनी है, तो धीरे धीरे उन्होंने जो है भक्ति की लीला प्रकट करनी शुरू की। वो किस प्रकार से शुरू की, जब ईश्वरपुरी नाम के एक महान भक्त आए नवद्वीप में, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो जब आए नवद्वीप में तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो एक कृष्ण लीलामृत नाम का एक ग्रंथ लिख रहे थे, तो उनको ना उसकी एडिटिंग करानी थी। तो उन्होंने पूछा कि ये एडिटिंग कौन कर सकता है? तो वैष्णव ने कहा कि यहाँ पर निमाई पंडित नाम का बड़ा अच्छा स्कॉलर है, बहुत जबरदस्त, आप उससे जो है एडिटिंग कराइए। उन्होंने कहा ठीक है, निमाई को बुलाया, निमाई से बातचीत हुई, निमाई से कहा कि तुम जो है इसकी एडिटिंग कर दोगे? निमाई ने कहा कि आपने जो लिखा है वो ठीक ही होगा, उसमें एडिटिंग की बात है, तो उसको थोड़ा कम करें, बहुत फीडबैक आ रहा है, पहले ठीक था। तो अगले दिन जो है निमाई लेके आए, उन्होंने कहा कि वैसे सब ठीक है, इसमें ना एक गलती है, आत्मपदे नाम का शब्द हमने गलत इस्तेमाल किया है। तो ईश्वरपुरी ने देखा, मैंने कहा अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने ठीक इस्तेमाल किया, और फिर एक्सप्लेनेशन दी। तो निमाई ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वही सही है। ये पहली बार था जब निमाई ने हार मंजूर की। तो ये शिष्य के लिए बड़ा गौरव की बात होती है, अपने गुरु से हारे, अपने गुरु से हारे, दिस इज गुड प्रभु, अब और मैं छेड़ना इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है गया में जो है फिर उनसे मिले वो, और फिर मैं डिटेल में जाना, जब वो अपने पिता के श्रांत ले गए थे निमाई, फिर वहां पर जो है ईश्वरपुरी से मिले, ईश्वरपुरी की उन्होंने शरण ली, उनसे दीक्षा ली। तो दीक्षा लेके जो है वो वापस आए, अब उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। लेकिन उनका व्याकरण का स्कूल तो अभी भी था, तो व्याकरण का स्कूल शुरू हुआ। चलो आज हम जो है व्याकरण की चर्चा करते हैं। तो कल हम कहां पर थे, शिष्य ने पूछा। शिष्य ने कहा निमाई पंडित, कल आपने शुरू तो किया था व्याकरण से, लेकिन फिर आपने कृष्ण के बारे में चर्चा शुरू कर दी और फिर 6 घंटे आपने कृष्ण के बारे में बोला आपने सब कुछ, तो वो टॉपिक तो वहीं का वहीं रह गया। अच्छा कल ऐसा हुआ? नहीं, आज हम कवर करेंगे, आज हम कल का भी कवर करेंगे और जो आज पढ़ना है वो भी कवर करेंगे आज, ठीक है, आज हम पूरा कवर करेंगे। चर्चा शुरू हुई, तो आज हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु जो होती है, हर जैसे हम धातु हर चीज को देखते हैं, तो धातु जो होती है, हर धातु का एक रूप होता है, उस रूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हर धातु का एक रूप होता है, तो हर वस्तु का जो रूप है वो रूप इसलिए आ रहा है क्योंकि कृष्ण का रूप है। तो कृष्ण का रूप जो है इतना सुंदर है, इतना मोहक है, इतना ज्यादा आकर्षित करने वाला है, ये ही कृष्ण का जो रूप है इतना दिव्य है। वास्तव में ये कृष्ण का जो रूप है, ये वास्तव में जो है एक भगवान का ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य भी है, इसलिए उनका नाम जो है रूप माधुर्य भी है। वैसे वो वेणु माधुर्य भी है, वेणु माधुर्य मतलब कि जो है वेणु जो जिन्होंने अपने हाथ से लिया है तो बहुत सुंदर लगते हैं, वो लीला माधुर्य भी है और वो जो है प्रेम माधुर्य भी है। तो उनका जो रूप है वास्तव में वो दिव्य है, और जो भी है इस रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है उसका जो है उसका जीवन उद्धार हो जाता है, उसका जो है जीवन उसका तर जाता है उसका। तो उनका नाम मदन मोहन भी है क्योंकि वो इतने सुंदर है, उनका रूप इतना सुंदर है कि जो मदन हमारे हृदय में जो मदन होता है, कामदेव होता है, वो भी आकर्षित हो जाते हैं। ये जो कृष्ण का जो रूप है, हाँ, इस तरह से जो है अगले 6-7 घंटे वो कृष्ण के रूप, कृष्ण के रूप, कृष्ण के रूप में बोलते चले गए। तो उन्होंने पूछा, फिर सबको समझ में आ गया ना आज का? कहते हैं निमाई आज भी कुछ हुआ ही नहीं, तुम आज तो आपने वो शुरू करना था धातु के बारे में और धातु से रूप की बात है और रूप से फिर आपने कहा कि कृष्ण का रूप और कृष्ण का रूप, कृष्ण का रूप, कृष्ण का रूप, और फिर सारा जो है सारी पाठशाला 6 घंटे फिर से जो है ऐसी भी थे। तो निमाई ने कहा कि ऐसा मैं नहीं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप। कहते नहीं निमाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपसे तो हमने सब कुछ सीखा है। अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अपना अब कृष्ण ही दिखते हैं बस मुझे, अब ना कृष्ण ही विचारों में रहते हैं, अब कृष्ण हृदय में रहते हैं, ना मैं व्याकरण नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब मुझे नहीं, मैं पाठशाला बंद कर रहा हूँ, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं अब ये जो है मैं अध्यापक का रोल जो है अध्यापक का जो ये मैं सेवा कर रहा था मैं नहीं कर सकता अब। देखा नहीं नहीं निमाई निमाई, हमने जो कुछ भी अब तक आपसे सीखा है बस यही हमारा धन है, हमें और जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब आप हमें वो सिखाओ जो कि आप हमें वास्तव में सिखाना चाहते हो। तो जो है निमाई उनका हृदय क्योंकि पूरी तरह से परिवर्तित हो, आप वो वास्तव में जो है भक्ति की लीला का प्राकट्य कर रहे हैं। कहा निमाई पंडित था जो कि किसी के सामने झुकते नहीं थे, तर्क से तर्क पे तर्क काटते थे, लोगों को झुकाते थे, भक्तों को पकड़ लेते थे कभी कभी, बताओ हाँ मुझसे तर्क शास्त्र करोगे, यही निमाई जो है आप भक्ति की लीला का जब प्राकट्य कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वास्तव में आप कृष्ण के अलावा कोई सोचता ही नहीं। तो वो जो है भक्तों में कपड़े धोते हैं, उनके बर्तन धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अब वो इस प्रकार के हो गए निमाई। हमने कहा अरे कमाल हो गया निमाई, इतना बदल जाएगा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जो है इस प्रकार से जो है निमाई जब श्री गौरांग महाप्रभु जो है इस तरह से अपनी लीलाओं को प्राकट्य कर रहे थे, तो जब वो नदी को देखते थे, नदी कहते ओ यमुना यमुना, जब वो किसी पत्थर को देखते, किसी चट्टान को देखते, ओ गोवर्धन गोवर्धन, हमारे कृष्ण को था, हमारे कृष्ण को था, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, तो जो बहुत बेचैन हो जाते तो भक्त कहते हैं कि अरे कृष्ण बाहर थोड़े, कृष्ण तो आपके हृदय में, कृष्ण मेरे हृदय में, तो वो अपना 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 सीना फाड़ देने चाहते थे, मैं कृष्ण को मिलना चाहता हूँ, तो उनका हाथ पकड़ते थे भक्त की, नहीं 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 कृष्ण आपके साथ ही है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको शांत करके करते थे भक्त का। तो भक्त का जो विजन होता है वो ऐसा ही होता है, वो कृष्ण को अब जो है चारों ओर देखता है, वो कृष्ण को जो है वो चारों ओर देखता है। तो ये जो है वास्तव में भगवान ने खुद करे दिखाया कि वास्तव में हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। तो जब तक हम सिर्फ शक्ति देखते हैं लेकिन शक्ति को शक्ति के स्रोत के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो यही शक्ति जो है माया के रूप में हमको हमारे हमको हर लेती है, हमको ढक लेती है। लेकिन जब हम शक्तियों को देखते हैं लेकिन शक्तियों को कृष्ण से संबंधित देखते हैं, तो जो है यही माया जो है हमको नहीं ढकती, ये हमको दिव्य ज्ञान देती है, बल्कि ये हम मतलब हम अज्ञानता से हट से निकल पाते हैं। तो जब भगवान से चीजों को स्वतंत्र रूप से देखते हैं तो तब उनसे उनके प्रति भोगने की इच्छा होती है, लेकिन जब हम चीजों को कृष्ण से संबंधित देखते हैं तो जो है भोग इच्छा से हम धीरे धीरे मुक्त हो पाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान या भगवान के भक्त ये हमेशा जो है कृष्ण का स्मरण इस तरह से करते हैं, और इस तरह से यहां क्या बताया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति कभी कृष्ण को नहीं भूलता, क्या बताया जा रहा है यहां पर? जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अदृश्य नहीं होते भगवान उसके लिए कभी। तो श्रील प्रभुपाद भी थे इस तरह से, जब मॉर्निंग वॉक पे जाकर थे तो भक्त इसीलिए बड़े इंटरेस्टेड जाते थे, पता नहीं अब प्रभुपाद कहां पर क्या चीज बोल देंगे, क्योंकि वो तो हजार जो है उनकी दृष्टि कृष्णमय है, उनकी दृष्टि कृष्णमय है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक बार एयरप्लेन में थे, तो प्रभुपाद जी जो एरोप्लेन ना आगे वीडियो चलता है जिसमें आप मूवीज देख सकते हैं, है ना, और कुछ गेम्स खेल सकते हैं जो अप सीट में होते हैं, है ना, जो लोग गए फ्लाइट में। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में थे तो ना उसमें चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी, तो प्रभुपाद उसको देख रहे हंस रहे थे, प्रभुपाद देख रहे चार्ली चैपलिन की मूवी और प्रभुपाद हंस रहे। अब भक्त जो है वो सोचते हैं यार प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे हैं तो कमाल है, मतलब ये तो जगत गुरु है, चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे हैं और प्रभुपाद हंस भी रहे हैं, यानी प्रभुपाद एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, कैन यू सी दिस ह्यूमर इन दिस, दिस इज द स्पार्क ऑफ द ह्यूमर इन कृष्ण लोका, इफ द स्पार्क ऑफ द ह्यूमर इज सो गुड देन हाउ मच ह्यूमर वुड देयर बी। यहां जो है उस हास्य रस का जो है एक एक तुच्छ एक विकृत रूप जब यहां आता है तो हमको इतना अच्छा लग रहा है यहां पर। तो उस रस के बारे में, उस हास्य रस के बारे में सोचो जो भगवान और उनके भक्तों के बीच में होता है उनके धाम में, बहुत चिंतित है। तो प्रभुपाद अगर वो मूवी देख रहे तो प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियस है उस वक्त। तो ये भक्ति दृष्टि होती है। तो इसलिए जो है वास्तव में हमने अपनी चेतना के ऊपर कार्य करना है। और क्या बताया जा रहा है वहां इस समय, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। अभी हम क्या है, ईश्वर के दास है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, भगवान की दास ही कौन है, माया, हम माया के दास हैं, भगवान के दास हैं लेकिन इनडायरेक्टली। प्रभुपाद बोलते हैं हम कृष्ण के दास इनडायरेक्टली नहीं होना चाहते, हम कृष्ण के दास डायरेक्टली होना चाहते। इनडायरेक्टली मतलब माया भगवान की दास ही और फिर हम माया के दास बने हुए हैं। तो माया जी हमें आपके ऑफिस में काम नहीं करना, रिजाइन है, हमें कृष्ण के ऑफिस में करना है। तो हमें डायरेक्ट भगवान के दास बनना है, दोनों अवस्था में भगवान के दास ही है। लेकिन सही स्थिति हमारी क्या है, जब माया के दास नहीं है जो कि भगवान की दासी है, हमें जो है कृष्ण का दास बनना है वास्तव में। कृष्ण का दास बिंदास, माया का दास हमेशा उदास, जैसे कहते हैं हमें। तो इससे हम लोग उदास बने रहते हैं क्योंकि हम लोग अपनी, हमारे जो रियल बॉस हैं उनसे जुड़ते नहीं है। इस संसार में जो बासे लोग हैं उनको बॉस बना बैठते हैं, फिर हमारा जीवन ही बासा हो जाता है। ओवे चिड़चिड़ा, गुस्सैल, लालची, लोभी, शोषण करने वाला, अरे तो कहते हैं हमारा मेरा बॉस हरी साड़ू है। एच फॉर हिटलर, ए फॉर एरोगेंट, आर फॉर रास्कल, आई फॉर इडियट, naukri.com वो पहले एड आया करती थी, आज नौकरी आती नहीं आती। तो हरी, तो सारे सारे बॉस ऐसे होते हैं, लेकिन वहां से सारे सब सड़े हुए हैं, बासे हैं, इसीलिए ऐसे बास हैं। असली बॉस तो कृष्ण है। तो जब तक हम उनके उनका बॉसत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और अपने दासत्व को उनके बॉसत्व में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सुख की स्थिति नहीं आने वाली। तब क्या है, भगवान हमेशा अदृश्य रहेंगे और हम भी अदृश्य रहेंगे। जैसे नीत्शे नाम का एक नास्तिक हुआ, उसने कहा गॉड इज डेड, नीत्शे। उसका अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ग्रेवयार्ड पे लिखा नीत्शे इज डेड गॉड। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अदृश्य है और भगवान के लिए ऐसा व्यक्ति अदृश्य है। लेकिन भगवान जो है ऐसे लोगों के ऊपर फिर भी जो है कृपा करते हैं, कि इनको ऐसी परिस्थिति में लाते हैं जिससे कि वो भगवान के प्रति अपराध ना करें, भगवान से द्वेष ना करें। इसे श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ा अच्छा श्लोक इसके अंदर कोट किया है, वो है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। प्रभु बता रहे कि वास्तव में भक्त सब और क्यों देख पाता है, क्योंकि उसको प्रेमांजन लगाया, उसने मस्कारा लगाता है ना आंख में, मस्कारा है, काजल लगाते हैं। तो अगर कामांजन हमने अभी लगाया हुआ है, कामांजन यानी कि काजल तो है लेकिन वो लस्ट का काजल है, वो हम आंख में लगाते हैं, चलो हम भगवान को देखने चलते हैं, आओ भगवान को देखने चलते हैं, अरे भगवान के दिख नहीं रहे भाई, भगवान के दिख नहीं रहे हमें, नहीं बेटा तुमने गलत काजल लगा लिया, तुम्हें प्रेमांजन लगाना होगा तब तुम्हें भगवान दिखेंगे। जैसे कई बार किसी ने पूछा भक्ति ठाकुर से, कैन यू मेक मी सी गॉड, क्या तुम मुझे भगवान, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड बट वी शुड सर्व हिम सो नाइसली दैट ही कम्स टू सी यू. तो हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर उनकी सेवा इतनी अच्छे से करनी चाहिए कि भगवान खुद आपको देखने के लिए आ जाए. कौन है जो ऐसी सेवा कर रहा है मेरी, कौन है जिसकी मैं इसकी भक्ति के इतने उबाल उठ रहे हैं, कौन है वो जो ये जो है ज्वालामुखी लेके अपने हृदय में घूम रहा है प्रेम का, कौन है ये? तो भगवान देखने के लिए आए ऐसे भक्त को. जिससे जो होते हैं, जो हम लोग जो है, हम लोग इसलिए हो रखा है क्योंकि जो भक्त भी होते हैं, जब प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान को देख रहा हूं, क्योंकि भगवान जो है उसे दर्शन देते हैं, क्योंकि उसने प्रेमांजन अभी आ गए उसके. तो पहली बार जो उसे भगवान का दर्शन होता है, जैसे हमारे जैसे जीव है, अगर हम सब जीव है ना, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम वास्तव में उस स्तर पर पहुंचते हैं जब भगवान के दर्शन हमें होने शुरू हो जाते हैं और प्रेमांजन कामांजन जो है हम हटा देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, और जो है प्रेमांजन लगाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, भक्तों के संग में, तो फिर क्या होता है वास्तव में तो हम भगवान को देख पाते हैं. तो भगवान को जब देखता है, जब पहली बार जब देखता है तो भगवान होते हैं और फिर ओझल हो जाते हैं. अरे यार ये क्या था, ये कोई सपना था क्या? फिर उसका नहीं, सपना तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी आंखें भारी भारी तो नहीं लग रही, क्योंकि सोने के बाद क्या होता है जब सपना देखते हैं तो आंखें बोलो तो आंखें भारी भारी होती हैं. अरे मेरी आंखें तो भारी भारी नहीं हो रही, यानी कि सपना तो नहीं था ये, फिर क्या था ये यार? ऐसा नहीं मुझे हेल्यूसिनेशन हुआ हो, हेल्यूसिनेशन आंदे क्या होता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि आप देख रहे हो लेकिन वो वहां है नहीं. जैसे कुछ ऐसी बीमारी होती है, ये देखो मैं कीड़े कीड़े चल रहे हैं, मेरे कीड़े चल रहे, कीड़े कीड़े चल रहे, कीड़े चल रहे हैं, उसे लगता है उसके ऊपर कीड़े चल रहे हैं लेकिन वहां कीड़े होते नहीं. तो ये बीमारी होती है, एक मानसिक बीमारी होती है, हेल्यूसिनेशन. जैसे कि एक बार एक व्यक्ति गया पागलखाने में, तो पागलखाने में गया व्यक्ति, तो उसने कहा कि भाई साहब यहाँ सब अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं. तो कोने में देखा एक शांति से बैठा हुआ था, कहते ये ठीक लग रहा है. तो उससे बात की, कहते हैं भाई साहब नमस्कार, कहते नमस्ते जी नमस्ते, आइए बैठी बैठी. मैंने कहा ठीक लग रहा है भैया, ठीक है. कहते आप यहाँ पर ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं, कहते इतना दुख होता है इन लोगों को देख के ना मेरे को. अरे क्यों क्यों दुख क्यों होता है? कहते हैं देखिए कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं ये लोग, चीखना चिल्लाना कूदना बड़ा अजीब लगता है मेरे को. कहते हैं आप मतलब आपको बड़ा करुणा होती होगी ना, मतलब बिल्कुल करुणा होती है. जब एक राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखे दुख नहीं होगा उसे? तो उसका हेल्यूसिनेशन है, वो दिखता है यार प्रजा है मेरी, मैं राजा हूं, ये कैसी मेरी प्रजा है, कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है. तो उसका हेल्यूसिनेशन एक तरह का पागलपन. तो भक्त सोचता है क्या मेरे को हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं कि मतलब कृष्ण मेरे को दिख रहे हैं लेकिन वहां कृष्ण है नहीं. लेकिन वो सोचता है लेकिन अगर ये हेल्यूसिनेशन होता है यानी कि भ्रम होता अगर, तो इससे इतना आनंद नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि भ्रम होने पे आनंद थोड़ी मिलता है कि नहीं. अरे कुछ लोग सांप दिखता, अरे सांप 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 सांप, अरे कहां है भाई सांप, कौन सा सांप भाई, अरे वो देखो 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 काला सांप काला सांप, तो कौन सा सांप भाई, उसका हेल्यूसिनेशन होता है. लेकिन इससे क्या है वो मतलब आनंद थोड़ी मिलता है ना. तो फिर वो सोचता है कि लेकिन मैंने देखा तो है, तो अगर ये हेल्यूसिनेशन होता अगर ये एक भ्रम होता तो इतना आनंद नहीं मिलता मेरे को देखने पर, यानी कि ये हेल्यूसिनेशन मिलता. तो जो है भक्तों के पास जाता है और ये बात बताता है, तो उसे गुरु जान या उसके जो वरिष्ठ वैष्णव उसे बताते हैं तुम्हें साक्षात कृष्ण के दर्शन. तो उसका हृदय जो है और फूट फूट के जो है कृष्ण की ओर बहता है कि कृष्ण मेरे को आए थे देखने के लिए, मैंने कृष्ण को देखा. लेकिन इसलिए देख पाता है वास्तव में क्योंकि उसने प्रेमांजन लगाए. ये वो लोग कहते हैं क्या आप कहां है भगवान, दिखाइए भगवान कहां है. जैसे कौवे बने रहेंगे तो कौवे कभी देख नहीं सकते इस तरह से भगवान को, तो वास्तव में जो है हमारी हमारी दृष्टि ही वैसी नहीं है कि हम देख सकें भगवान को. क्या योग्यता कहां करते रहते हैं इसलिए. तो इसलिए जब तक जो है तो हमें जो है योग्य बनाना पड़ेगा. अब आप देखिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर को मिलने का जाना हो, प्राइम मिनिस्टर को देखना है तो आपको योग्यता चाहिए, है ना. तो एक संसार के व्यक्ति को जब मिलने के लिए हमें योग्यता चाहिए, तो भगवान को देखने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए. हमारे नौकर लगे हैं, कहां है भगवान आओ, हाँ जी मैं आ गया बताओ जी भगवान ऐसे तुम्हारे नौकर लगे हैं. तो योग्यता हासिल करनी पड़ती है, राइट, है ना. तो जो है हम भगवान को देखो। और योग्यता क्या है श्री प्रभुपाद यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन है ना। तो जो आंखों में मस्कारा लगाना है हमें प्रेम का, कामांजन का हटाना है, बड़ी इतनी मोटी ले रखी हुई है कामांजन की, प्रभु जी कुछ दिख नहीं रहा है इतना, ये ऐसा थोपा हुआ है कामांजन, दिखता नहीं है, बताए कहाँ है भगवान, भगवान नहीं है भाई। तो इतना मोटा जब परत लगाई हुई है आंखों पे, इसको हटाना पड़ेगा ना पहले, है कि नहीं, फिर उसका प्रेमांजन लगाना पड़ेगा, फिर दिखेंगे ना भगवान, है कि नहीं। तो तब जो है ये स्थिति तब आती है उसकी। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है तो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई जो है भय नहीं होता। हम लोग भय की स्थिति में इसीलिए हैं क्योंकि हम भगवान से अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप में मानते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं आवर द ट्रू इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हम अपना निर्भरता भगवान के ऊपर जो है घोषित कर दें, ये ही असली आत्मनिर्भरता है। वट इज द ट्रू इंडिपेंडेंस टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, दैट इज ट्रू इंडिपेंडेंस। और हम लोग जो है अक्सर कहते हैं प्रभु जी हम जब बाहर काम करते हैं ना एकदम जो है मतलब लगता है कि ये तो वातावरण हमको निकल गया है एकदम, लगता ही नहीं कि प्रभु जी हम भक्त हैं, इसलिए ऑफिस में जाके बड़ा अजीब लगता है। ये बहुत अच्छा है हालांकि एक तरह से, क्योंकि भगवान का विरह महसूस होना चाहिए। इफ वी आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा देन वी आर नॉट सेपरेटेड, इफ वी आर नॉट फीलिंग सेपरेशन देन वी आर सेपरेटेड। समझ रहे मेरी बात, जब विरह महसूस हो रहा है ये अच्छा है, यानी कि उस विरह से आप जुड़े हुए हैं भगवान से। ये कब कब मैं जाऊंगा, शाम को जाना मुझे, आज मंडे क्लास है, शाम को गीता क्लास है, अरे कल संडे है, कल सुबह हम जाएंगे, मंगल आती जाएंगे, तो विरह ये जो भावना है इस विरह से जुड़े हुए हैं हम। लेकिन जब विरह की भावना नहीं है तो हम वास्तव में अलग है। इसलिए जो है वो विरह, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो कृष्ण से जो विरह है ये ही वो फेविकॉल है जो कि जोड़ता है भगवान से। और विरह में जो है हम ज्यादा अच्छा संग करते हैं किसी का, जब एक्चुअली किसी से बड़ा विरह फील होता है, बड़ी इंटेंसिटी होती है उस मिलन में, है ना, उस विरह के मिलन में, समझ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जैसे कोई बॉयफ्रेंड है उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, हम सोच रहा है कि ना अब लंच टाइम में जाऊंगा उसे मिलने के लिए, तो जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वो समय बिताता है ना, वो एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा है उसको। मैं जाऊंगा, अब 1 घंटा रह गया, अरे अब तो आधा घंटा रह गया, अब 10 मिनट रह गए, बस होने वाला। एक्चुअली वो उस सेपरेशन में जुड़ा हुआ है उसके साथ, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ। उसी तरह से जहां हम सोचते हैं अरे अब जो है अब ये दिन आने वाला, अब 2 दिन रह गए गीता क्लास को, हाँ अब 2 दिन रह गए, अब संडे को जाएंगे हम, हाँ राधा पार्षदी के दर्शन करेंगे, हाँ बस अब तो 6 घंटे रह गए, रात की नींद है और उसके बाद बस कल सुबह राधा पार्षदी। ये जो विरह का भाव है इससे हम दूर रह के भी राधा पार्षदी के चरणों में, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हमारी दृष्टि मैटर करती है। ऐसा कोई होता है जो कि यहाँ गड़ी में रहता हूँ, अरे ये तो रहा है यार टेम्पल, चले जाएंगे, ठंड रखे यार, वो यानी वो अलग है वो। और एक होता है वो कहाँ रोहिणी से आता हो, कहाँ समुद्र पार करके, ही इज मोर क्लोजर टू राधा पास, वो ज्यादा करीब है। और होता है कोई गड़ी में रहने वाला हो या कोई इनफैक्ट मंदिर में रहता हो, सो रहा है कंबल ओढ़ के वहीं पर आरती कर रहा हो, वो यानी कि वो अभी वो अलग है अभी। तो इसलिए वास्तव में जुड़ते हैं हम तब है जब जो है भगवान के प्रति भावना, भगवान के प्रति विरह, भगवान की अब हमारे अस्तित्व में जो है उनकी पूजनीय स्थिति, जब इसके जब टच में रहते हैं हम, तो हम भगवान के वास्तव में टच में, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति जो है ना तो भगवान से कभी अदृश्य होते हैं और ना ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए अदृश्य होता है। तो इसको हमें इस तरह से समझना है कि भगवान की शक्तियां चारों आ रहे हैं, हम सब और देख सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो समय हो गया, किसी को प्रश्न हो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ एक्चुअली हम भी जो है वैसे जो है 3 शक्तियां हैं, ठीक है, पराशक्ति यानी कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, और पराशक्ति यानी भौतिक शक्ति, माया शक्ति, इसको कहते हैं योग माया, इसको कहते हैं महामाया। हम बीच में आते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हम या तो संसार के भोग करने के लिए यहां महामाया के पास चले जाएं, या फिर जो है हम वास्तव में भगवान की सेवा करें योग माया के अंतर्गत। ठीक है, तो हम है, हम भी स्पिरिचुअल एनर्जी है भगवान की, हम भी आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा के बजाय अपने भोग की इच्छा करते हैं तब जो है माया झापटिया धरे, तब माया जो है हमको झपट लेती है और फिर जो है ये अज्ञानता का आवरण आया था हमारे चारों ओर। जैसे हम आध्यात्मिक शक्ति की शरण लेना शुरू कर देंगे तो ये भौतिक शक्ति का आवरण जो है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अभी जो है हमारा हाल कुछ ऐसा है, जैसे कि कोई बीमार होता है तो क्रोसिन खाता है, तो क्रोसिन खा रहा है वो है, उसके बाद क्रोसिन खाई उसने, फिर थर्मोमीटर लिया, मुंह पे लगाया, अरे बुखार तो साफ हुई भी है लेकिन क्रोसिन भी गई अंदर, राइट। तो हम दवा ले रहे हैं तो बीमारी से निकल जाएंगे लेकिन बीमार अभी भी हैं। तो हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं जिसमें व्यक्ति बीमार से जो है स्वस्थ अवस्था की ओर जाता है, तो हम वो बीच की स्थिति में अभी हम हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण महामंत्र है, साधु संघ है, भगवद गीता है, दवाई जा रही है अंदर है, राइट। तो एक बीच की स्थिति होती है ना, जब व्यक्ति बीमार होता भी है और स्वस्थ भी हो रहा होता है, तो हम उसमें हैं अभी, लाइक दैट। जैसे मैं अभी एक स्कूल में गया था तो वो टीचर कहती है आर यू इन लव विद कृष्णा, मुझसे पूछती है। मैंने कहा माता जी आई एम इन प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब ये कि अभी हम प्रक्रिया में हैं अभी। कहते हैं ये कहता है प्यार, तो ये तो कहते ना एक नजर में प्यार होता है बस, वन क्या बोलते हैं उसको, वन लव एट फर्स्ट साइट है। तो आपको तो मैंने कहा नहीं माता जी, एक्चुअली लस्ट एट फर्स्ट साइट होता है लेकिन लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, लव के लिए जो है जद्दोजहद करनी होती है। सो आई वी आर इन प्रोसेस। तो जो है वो कोर्स उसके हालात हैं, लेकिन मैं तो कृष्ण की दीवानी में हूँ। अच्छा जय माता दी, ठीक है माफ करो मेरे को, मैं आप होंगी उस स्तर पे, मैं अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ अभी, आपकी लव स्टोरी में कोई विलन नहीं होंगे, मेरी लव स्टोरी में है। तो एनी वे हमारा गीता सार कॉन्टेस्ट आप प्लीज अपने स्कूल में कराइए, लाइक दैट। सो इट वेंट ऑन। तो पॉइंट इज दैट कि जो प्रेम होता है उसके लिए जो है ये प्रक्रिया है वास्तव में। तो हम लोग जो है स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। ठीक है, और किसे हुए सवाल? यस, बिल्कुल। तो बहुत ही चीजों की आवश्यकता के पीछे भावना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे छुरी से जो है हफ्ता ही वसूल कर सकते हैं, चल रहे हफ्ता निकाल रहे हैं, और उसी छुरी से जो है डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन भी करता है, तो फर्क कहाँ है? छुरी तो सेम है, कॉन्शियसनेस फर्क है ना। उसी तरह से हम जब जैसे कि काम भी करते हैं बाहर, है ना, तो ऑफकोर्स पैसा आएगा पैसा जाएगा, बहुत ही चीज है ना, कपड़े लत्ते पहनना ये बहुत ही चीज है ऑफकोर्स। लेकिन जब हमको हम जब इसके पीछे भावना ये होती है कि हम अपने आप को सक्षम करें और कि हम भगवान की सेवा कर सके, धन आए ताकि हम परिवार का भरण पोषण हो जाए, ताकि वो कृष्ण की सेवा में लगे, मेरा शरीर स्वस्थ हो ताकि इस कृष्ण को जो है मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊं, है ना, या कुछ पोर्शन ऑफ मनी मैं एक्चुअली प्रीचिंग वर्क के लिए दूं, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए। तो कॉन्शियसनेस बदल गई ना। कई व्यक्ति ये सोचता है मैं इस तरह से मनी इन्वेस्ट करूंगा फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर मैं ऐसा धनी हो जाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा पड़ोसी को, तो एक तू गरीब मैं तेरे से आगे निकल गया, तो इस चेतना से करेगा वो, तो फिर वो कर्मी कॉन्शियसनेस है ना। और एक जो है ऐसे करता है कि मुझे जो है कृष्ण के लिए कमाना है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मीपति की, नारायण की, तो लक्ष्मी को लेके आना है इन भूखे भेड़ियों की कंपनी से काम करके, ताकि इसको जो है मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकूं। तो मुझे हनुमान जी का कार्य करना है, सीता मैया को राम जी के पास लेके आना है, लक्ष्मी को नारायण के पास लेके आना है, लाइक दैट। तो उसमें चेतना ही अलग है फिर व्यक्ति की। तो हम जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे हम खुश नहीं रहते हैं, हमें लगता है जब तक स्वार्थी नहीं होंगे तब तक खुश नहीं रहेंगे। ये जितना मिथ्या अहंकार है ना आपको सारी उल्टी ही सोच कर आएगा, स्वार्थ से कभी सुख नहीं मिलता, होता है थोड़ा थोड़ा मिल जाए कोई इंच पुंच, इनसिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, तुच्छ है वो। जो वास्तव में जो सेवा का जो आनंद है वो ज्यादा ऊंचा है। इससे बड़े बड़े बिलियनियर्स क्या करते हैं, वो बहुत दान करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा खुशी मिलती है इससे। बिल गेट्स करोड़ों करोड़ों रुपए देता है वो एड्स के लिए, WHO में, क्राई में, यूनिसेफ में, क्यों? देखे ज्यादा खुशी मिलती है। अफकोर्स वही भौतिक है, वो बात और है. द पॉइंट इज दैट कि सेवा करने का जो है जो आनंद है वो ऊपर है. तो हमें जो निस्वार्थ भाव जो है ये इसका विकास करना है भगवान की सेवा में. तो चीजों में प्रॉब्लम नहीं है, चीजों के इस्तेमाल के पीछे जो चेतना है वो इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्शियसनेस. यस. हाँ हाँ, ये वैसा सवाल पूछा कि भाई देखिए बहुत बड़े सवाल है कि भाई भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना. और हम भी हमको लेकिन इच्छा करने की स्वतंत्रता भी है, राइट, तो उसमें फ्रीडम भी है. तो इन दोनों चीजों को सामंजस्य कहते हो. वास्तव में इच्छा करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, ठीक है, लेकिन इच्छा करने के बाद कर्म करने के बाद जो उसका फल है वो हमारे फिर कंट्रोल में नहीं है, वो तो फिर भगवान से आएगा. तो फ्री विल भगवान देते. जैसे फॉर एग्जांपल अब दिल्ली स्टेट में चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित, पूरा वही कंट्रोल वही चीफ मिनिस्टर के हाथ में, लेकिन फिर भी दिल्ली के नागरिक होने के नाते आपके पास स्वतंत्रता है कि आप तिहाड़ जेल में अपना जीवन बिताना चाहते हैं या फिर शहर में बिताना चाहते हैं. एक बार कुछ काम कर दिया फिर भाई शीला दीक्षित कंट्रोल में, भाई पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हाँ भाई साहब टेढ़ा काम किया था आपने आयो तिहाड़ में, राइट. तो पॉइंट इज दैट कि इच्छा करने की स्वतंत्रता बीइंग अस दिल्ली सिटीजन आपके पास है, लेकिन जब काम हो गया इच्छा के बाद उसका फल है वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है. हम कहते हैं हम तिहाड़ नहीं जाएंगे, हम तो खून करते रहेंगे लेकिन हम तिहाड़ नहीं जाएंगे, नहीं आप वो तो जाना पड़ेगा. तो उसी तरह से भगवान की सारी सृष्टि है उसे भगवान ने फ्री विल दी है कि ओके तुम सही करना है गलत करना है क्या करना है उसकी फ्री विल दी, लेकिन कार्य करने के बाद जो कर्मों के फल है वो फल फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो फल फिर हमें भोगने पड़ेंगे. तो इसमें पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता. ऑफकोर्स क्योंकि भगवान जैसे कि शीला दीक्षित कंट्रोल में है दिल्ली, उस तरह से भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान जो है जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वो इच्छा कर सकता है. इसी तरह तो इच्छा करने का जो है वो भगवान ने उसकी फ्री विल दी है. अगर वो ही छीन लेंगे तो हमारे हम तो मृत्यु हो जाएंगे ना फिर तो. अगर चॉइस भी नहीं हमारे पास तो प्रेम की बात पता कहां से आएगी, है ना. भगवान ये थोड़ी करते भाई प्रेम करना नहीं कर रहा तो करना पड़ेगा, नहीं करा बंदूक से मार दो इसे, उड़ा दो इसे. क्या चीज क्यों है, यानी कि वो अभी कृष्ण का दास नहीं, वो इंद्रिय का दास है, वो शुगर दास है ना, वो शुगर दास है. अभी तो कहेगा अरे मीठा अरे गाजर खलवा रहे खा लू, नहीं नहीं अरे डायबिटीज है, नहीं नहीं अभी इंसुलिन लगाया है, लेकिन जब मुंह में जाएगा ये पिघलेगा मुंह में, ओहो बड़ा आनंद आएगा. तो वो अभी क्या है, वो हलवा दास है. आगे हलवे हलवे में धुआं उठ रहा है, हलवे का जलवा जो है उसके दिमाग पे चढ़ रहा है. हाँ वाह ये भी अच्छा है. भौतिक भी होने का मन बहुत करता है और आध्यात्मिक होने का मन बहुत करता है. मैं स्कूल डेज में था तो एक मूवी आई थी दिल तो पागल है, उसमें एक हीरो खड़ा है उसके साथ दो हीरोइन खड़ी हैं. तो वैसे ही है ये आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन दोनों दोनों को है, दोनों चाहिए. तो मन जो है जब नियंत्रित नहीं होता तो ऐसी इच्छा करता है क्योंकि मन अभी चंचल है. तो एक लक्ष्मी का नाम भी चंचला है क्योंकि वो जब कृष्ण की सेवा में नहीं लेती ना तो यहां संसार में देखो ना मनी जो है चंचल है, किसी को ठहरती नहीं है. लेकिन लक्ष्मी को आपने देखा स्टेबल कहां देखा आपने, यहां शांत हो वो नारायण के चरणों में. उसी तरह से मन भी चंचल है क्योंकि ना अभी कृष्ण से अलग है, जब कृष्ण में लग जाते हैं तो ये स्थिर होता है वास्तव में. तो एक संघर्ष है वास्तव में इसको वापस कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये संघर्ष है. लेकिन जब ये लग जाएगा तो ही स्थिर होगा ये. तो असली चॉइस जो है वो मन की यही है कि ये कृष्ण की सेवा में लग जाए. तो जब ये भौतिक होना चाहता है तो इसको 100 जूते और 100 झाड़ू मारने चाहिए ऐसे सुबह शाम. 100 जूते मारो विनम्रता के और 100 झाड़ू मारो ऐसे हरि नाम के. क्या हो गया भाई है तो बहुत गुंडागर्दी तुम्हारी रही है इतने जन्मों से, अब नहीं, अनोयम हरे कृष्ण डिवोटी, अब मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहने वाला, तुम्हारे ये चंचल बने फाइट अगेंस्ट दिस बाय चैंटिंग द होली नेम, तुमको मारूंगा मैं झाड़ू से हरि नाम के, और जूते मारूंगा तुम्हें विनम्रता के, 100 जूते विनम्रता के और 100 झाड़ू हरि नाम के, मारना है इसे, और तब जो है तब ये ठीक होगा। तो चंचल है क्योंकि कृष्ण ज्यादा वो रखा है, जैसे कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बच्चा जब ऐसा होता है तो बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली ये कहता है ना, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, मुझे वो चांद भी चाहिए, मुझे सूर्य भी चाहिए, 2 लाफे, तो मन वैसे ही है। और ठीक है, समय हो गया है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री श्री राधा पांच साथी लता विशाखा देवी की जय।